देखते हैं हम तफसीर आयत नंबर 168 से सूरतुल बकरा। हम इससे पहले सबक में पढ़ चुके हैं जहां पे हमारी बात खत्म हुई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के अलावा औरों से शदीद मोहब्बत करते हैं, और हमने ये देखा है इन आयात को पढ़ के अल्लाह ताला ने हमें ये भी समझा दिया कि शदीद मोहब्बत सिर्फ किससे होनी चाहिए, यानी बजाय इंसान धोखा खाए या किसी गलत चीज़ से मोहब्बत करके उसके बाद रोए पिछताए गम में मुबतला हो, अल्लाह ताला इंसान का सबसे ज़्यादा हमदर्द है। उसको पता है कि इंसान ने कहीं गलत जगह पे दिल लगा लिया ना तो फिर बाद में बड़ा ही गम करेगा, बहुत दुखी होगा, बड़ा ही रोएगा, क्योंकि जो चीज़ें फानी हैं उनके साथ जिसने दिल लगा लिया वो तो फिर उससे जुदा हो ही जाएंगी। तो इंसान को फिर जो पछतावा होगा या वो चीज़ें बेवफाई करेंगी इसी दुनिया में, तो जब इंसान बाद में दुखी हो तो उससे पहले ही उसको पता होना चाहिए कि असल जगह कहाँ पे है जहाँ उसका दिल लगना चाहिए, जिसमें कभी वो पछताएगा नहीं। याद रखें कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कभी दुखी नहीं होगा, कभी नहीं पछताएगा। वो आता है ना अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब बीमार भी थे तो किसी ने पूछा कि अय्यूब बीमारी के दिन अच्छे थे कि अब तुम्हें सेहत मिल गई है तो ये दिन अच्छे हैं? तर फरमाया वो बीमारी के दिन बड़े ही अच्छे थे। उन्होंने कहा ये कैसा बंदा है जिसने ये ऐसी बात कर दी? उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं अल्लाह ताला पूछता था मुझसे कि अय्यूब कैसे हो तुम, तो वो दिन बड़े प्यारे थे। तो यानी जब इंसान अल्लाह से दिल लगा लेता है ना उसको फिर ये नहीं परवाह रहती कि मैं किन हालात में हूँ, वो जो उसके रब के साथ उसका कनेक्शन होता है वो उसको प्यारा होता है, वो उससे खुश होता है, और उसकी जो सारी जिंदगी की जो डिजायर्स हैं जो ड्रीम्स हैं जो सोच है जो अमल है वो सब बदल जाता है जब अल्लाह की जात महबूब हो जाती है। वो इंसान नहीं रहता जैसे दूसरे लोग हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, रहता इसी दुनिया में उसका दिल कहीं और होता है, वो रहता यही है उसकी सोचें कहीं और की होती हैं। लोग चीजों की ख्वाहिश करते हैं, उनके पीछे मरते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और उन्हीं के पीछे अपने दिन और रात खपाते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, और उसकी सोच भी कुछ और है, उसकी ड्रीम्स भी कुछ और हैं, उसकी ख्वाहिशात भी कुछ और हैं, वो किसी और ही दुनिया में रहता है। फिजिकली तो यही होता है, मगर देखिए जब इंसान की ख्वाहिशात ही बदल जाए ना तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, उसको क्या मिल गया, अच्छा उसको ये मिल गया, उसको ये पोजीशन मिल गई, उसने ये पा लिया, वो इतना आगे निकल गया, आए मैं तो पीछे रह गया, फिर इन चीजों से ऊपर उठ जाता है, वो अबव होता है इनसे, उसकी शादी अच्छी जगह हो गई, वो सैरें करने चला गया, उसने प्लॉट खरीद लिए, उन्होंने इतना बना लिया, ये उसकी फिक्रें ही नहीं रहती, तो उसकी तो सोचें कुछ और हैं, उसने कोई और फील्ड तलाश किया जहां पे वो दौड़ लगा रहा है, बाकी दुनिया किसी और फील्ड में दौड़ लगा रही है, उसको नहीं परवाह किसको कितना मिल गया, किसने कितना पा लिया, जमा कितना कर लिया, बैंक बैलेंस किसका कितना हो गया, क्योंकि वो उसकी ये दौड़ ही नहीं है, वो इस रेस में है ही नहीं, वो रेस कहीं और लगा रहा, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आपने जायजा लिया अपने दिल का, यहाँ पे किसको बिठाया गया और यहाँ पे किसको बिठाना चाहिए, कि जिस दिन ये चीज सही हो गई ना फिर आप देखेंगे कुरान पढ़ने का मजा ही कुछ और आएगा, फिर आप देखेगा कि कुरान कैसे दिल पे असर करेगा, फिर आप देखेंगे कि अमल करना कितना आसान हो जाएगा, ये बस फिर वो चीज आएगी समयना व अताना, हमने सुन लिया हमने मान लिया बस, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, फिर ये आता है। लेकिन जहां पे मोहब्बतों में कमियां होने लगे ना, ये मोहब्बत अल्लाह से कहीं दूर दूर है, दूर दूर से, फिर बड़ी बातें आती हैं, फिर कुछ समझ नहीं आती, फिर कुछ लॉजिक नहीं बनती, फिर बड़ा मुश्किल है ये आ जाता है। तो यहां से पहले करेक्शन होगी तो आगे सब ठीक होगा। प्रॉब्लम यहां पे है, हम प्रॉब्लम कहीं और ढूंढते हैं, मसला यहां है। ठीक है, तो अल्लाह ने हमें दुख से गम से बचा लिया कि एक हस्ती इस लायक है कि उससे मोहब्बत की जाए, और वाकई वो इस लायक है। तो देखें सुभान अल्लाह, हम तो इतनी इतनी उम्रों को पहुंच गए। आप सोचें जितनी भी हम सबकी एज है, सोचें हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि हमने किससे मोहब्बत शदीद तरीन करनी है, वो भी हमें कुरान सिखाता है। अभी जो लोग कुरान की तरफ नहीं आते वो कहते हैं हमें तो सब कुछ पता है। हाँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शदीद तरीन मोहब्बत किससे करनी है, फिर क्या और पता होगा तुम्हें। ये भी एजुकेशन कुरान दे रहा है कि देखो इन चीजों में ना दिल लगाओ, वरना रोगे पछताओगे। अल्लाह से मोहब्बत करो, खुश रहोगे हमेशा। दुनिया दुखी भी होगी ना, आपका दिल खुश रहेगा। जैसे मैंने आपको इमाम इब्ने तैमिया की मिसाल दी थी कि देखें कैद में जाने लगे हैं, तो कह रहे मेरे मेरी जन्नत तो मेरे दिल में, वो तो मेरे से कोई नहीं छीन सकता। अब जाने लगे जेल में तो क्या कह रहे हैं, उनको उनको जेल की परवाह नहीं, उनकी जन्नत उनके दिल में। और जन्नत क्या है उनकी, अल्लाह की मोहब्बत, वो तो साथ साथ है, उसको कौन छीन सकता है, उसको कौन निकाल सकता। तो इस चीज को बहुत, इस आयत को बहुत, इसके ऊपर तदब्बर करने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है। और कैसे ये मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह की बातें सुन के, अल्लाह की बातें सीख के, जिक्र की मजलिसों में बैठ के, नेक लोगों की सुहबतों में बैठ के। और वो चीजें, तमाम चीजें जो अल्लाह ताला से मोहब्बत में आपको बढ़ाती हूँ, वो करके अल्लाह के रास्ते में दे के, इससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती। और उन लोगों की बातें सुन के जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, उससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती। फिर अल्लाह के अस्माए हुस्ना में गौर व फिक्र करके, उससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती। और फिर आपको कहा था मैंने कि ये आयत जो है ना, जिसमें अल्लाह ने अपनी निशानियां बताई, आयत 164, ये बहुत गौर व फिक्र करने वाली आयत है। इससे भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है और बढ़ती है कि देखो मेरे रब ने मेरे लिए कितनी नेमतें की। मैं देखे, इंसान उससे मोहब्बत करता है जो उसको बहुत कुछ देता है। आपको भी वो बचपन में वो अंकल और आंटी बहुत अच्छे लगते हैं जो तोहफे लेकर आते थे, जो गिफ्ट्स लाते थे ना? तो अल्लाह तला ने तो इतने तोहफे दिए हैं हमें। जब इंसान इस चीज को रियलाइज करता है तो खुद ब खुद उसके अंदर मोहब्बत डेवलप होती है। फिर बताया गया कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं और दिल लगा लिए, वो कहीं औरों के पीछे अंधाधुंध चल रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। उनका अंजाम कयामत के दिन क्या होगा, इन्होंने अल्लाह को महबूब बनाने की बजाय किसी और को महबूब बना लिया। अल्लाह ताला ने हमें कयामत के दिन का नक्शा दिखाया, उनके आमाल क्या बन जाएंगे उनके लिए, हसरतें। यानी उनके आमाल, उनके जो काम है ना, वो अब उसका नतीजा क्या है, बजाय उसका नतीजा कोई निकलता कि कोई उनको जन्नत मिलती, उनको क्या मिल रहा है अपने आमाल की वजह से, हसरत हसरत। और उनकी हसरतें बढ़ती ही जाएंगी, चाहे क्यों ऐसा किया हमने। अल्लाह ताला हमें इन हसरतों से बचाना चाहता है, इसलिए हमें वहां की सैर एक दफा करा दी कि ये देख लो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए सुभान अल्लाह, कुरान पाक में ना बड़ा ही ये प्यारा स्लूप है कि अल्लाह ताला हमें हशर के मैदान में लेके जाते हैं, फिर वापस दुनिया में लेकर आते हैं, ताकि इंसान, जैसे एक आप किसी मूवी में देखते हैं कि एक सीन कहीं पुराना दिखाया जाता है, फिर अब इस टाइम में आ जाते हैं, मसलन पुरानी सदियों पहले की कोई चीज दिखाई जाती है, फिर उसके बाद इस टाइम में लाया जाता है। तो एक वहां का सीन दिखाया गया, फिर अब यहाँ पे लाया गया, ताकि इंसान उस, जो वो सीन दिखाया था ना वहां पे जो नाकामी थी, उससे आज अपने आप को बचा ले। क्योंकि दुनिया मजरातुल आखिर, दुनिया जो है ना आखिरत की खेती है, जो यहाँ पे बोओगे ना वही वहां पे काटोगे। ठीक है, तो अब अल्लाह ताला जो वहां दिखाते हैं सीन, और आप इसको वापस पीछे, वैसे इंसान वहां से कभी नहीं आ सकेगा वापस, लेकिन अभी टाइम है, वहां का सीन ऐसे दिखाया जैसे आपकी आंखों के सामने आ जाए कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, उनके दिल की कैफियत क्या है, उनको हसरतें हो रही हैं, वो पछता रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, उनके डायलॉग भी सुना दिए हमें, अभी हम पहुंचे नहीं है वहां पे। कितनी बड़ी बात है ये, कोई आपको दुनिया का इल्म बता सकता है कि पता नहीं कब, जब भी कयामत आएगी, वो एक जहान होगा, वहां पे कौन क्या बोलेगा, मुझे बता दे कौन सी साइंस, कौन सी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कौन सा मैथमेटिक्स, कौन सा फलसफा आपको ये बात बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। कि एक एक डायलॉग हमें यहाँ पे बता दिया गया कि वो कहेंगे लव अन्न लना करतन फनतबर्रा मिन्हु कमा तबर्रा मिन्हु, ये उनका डायलॉग है जो अल्लाह ने आज सुना दिया मुझे और आपको। तुम ना इस चीज में फंस जाना, ठीक है, आप इसके बाद अल्लाह ताला हमें दुनिया में लेकर आए हैं, और यहाँ पे एक ऐसी चीज की तरफ हमें तवज्जो दिलाई है जो लीड करती है इस अंजाम तक, ठीक है, ऐसी कोई चीज है जिसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, जिसका ख्याल ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उससे अमल वजूद में आते हैं, उससे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे आमाल, और वो क्या चीज है, वो चीज है जो हमारे अंदर जाती है, यानी हमारा खाना पीना, इसके ऊपर हमारी आमाल, हमारे अखलाक, हमारी सोच, हमारी तबीयतें, हम जिस किस्म की जो एनर्जी हमारे अंदर आती है, या जिस जिस किस्म की नेचर हमारी बनती है, आदत बनती है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हम खाते क्या। ठीक है, आज तो साइंस बताती है ना कि ये फूड खाओगे तो हाइपर हो जाता है, ये फूड खाते हैं तो इंसान सुस्त हो जाता है, ये फूड खाते हैं तो मोटापा आ जाता है, अब तो ये भी बताते हैं ना ये सारी बातें, तो ये तो कुरान ने पहले ही बता दी। देखें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत नंबर 168 में, अल्लाह ताला जो हम पढ़े इसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाना। या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुलू खाओ, कुलू है ना, कुल होता तो एक के लिए होता, कुलू सारे के सारे, सब इंसानों को क्या कहा जाता है, खाओ क्या, मिम्मा फिल अर्थ, जो जमीन में उसमें से खाओ, लेकिन दो शरायत के साथ, हलालन तय्यबन, हलाल भी हो तय्यब भी हो। किसको कहा जा रहा है, आप सोचेंगे मुसलमानों को कहा जा रहा होगा कि हलाल खाओ, नहीं, यहां पे किसको कहा जा रहा है, सारी इंसानियत को। आपको क्या पता चला इससे, इससे पहले भी हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं, पहले पारे में, या अय्युन्नास उबुदू रब्बकुम, सारे इंसानों इबादत करो, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया गया था ना, यहाँ पे भी या अय्युहन्नास है, इससे पता चलता है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये एड्रेस करता है पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी इंसानियत को, सब इंसान। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा मजहब होगा जो सारे इंसानों का हमदर्द हो, सिर्फ अपने मानने वालों का नहीं। ये नहीं कहा गया है मुसलमानों तुम सिर्फ खाया करो, बाकियों के लिए ये सब कुछ नहीं है, बाकी जाएं जहां मर्जी जो मर्जी खाएं, इनकी तुम्हें नहीं परवाह करने की जरूरत। या अय्युहन्नास, नास नास में वो भी लोग हैं जो काफिर हैं, नास में वो भी लोग हैं जो मुशरिक हैं, नास में वो भी लोग हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी भी भलाई रखी, क्योंकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, खाना पीना, इसी से फिर आगे उनके अमल वजूद में आएंगे, उनको भी कहा गया कि तुम अच्छा ही खाओ, जो भी जमीन में तुम्हारे लिए भी है, अनास सबके लिए, यानी सबके लिए। तो हम कहते हैं ना कि हम काफिर को नहीं देंगे, मुसलमान को सिर्फ खिलाएंगे, अल्लाह ने काफिरों के लिए भी रखा है ये, जो जो कुछ जमीन में वो भी खाएं पिए, उनको भी इजाजत है, अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम मुझे मानते नहीं हो, मैंने नहीं तुम्हें खिलाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी आपने पहले पारे के एंड में देखी थी ना, अल्लाह ताला जो सिर्फ तेरे ऊपर ईमान लाए उसको देना ये फल और ये सारा रिस्क, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, सबके लिए है ये, इस दुनिया में सबके लिए, आखरत में मगर ये सबके लिए अल्लाह की नियमतें नहीं होंगी। ठीक है, तो या अय्युहन्नास कुलू खाओ, इसका मतलब है अल्लाह ताला की तरफ से खाने पीने पे कोई ममानियत नहीं है, सबसे पहली बात हमें ये पता चली। क्योंकि जब बाज दफा लोग दीन की तरफ आते हैं तो वो क्या कहते हैं, तो पता नहीं इसमें ही नेकी है कि हम ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं, कोई अच्छा खाना हमें नहीं खाना चाहिए, बस बासी रोटी खाएं, सूखी रोटी खाएं, ये तकवा है। और हम कपड़े भी बस सिर्फ सफेद लिबास पहन के एक तरफ बैठे रहे, कोई हमने अच्छे कपड़े नहीं पहनने, कोई हमने कोई नेमतों को एंजॉय नहीं करना, ऐसा नहीं है, इसमें कोई तकवा नहीं है। कुलू खाओ, अल्लाह ताला ने कहा है, मिम्मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन में इजाजत दी है आपको, जो जो भी जमीन में है आपके लिए सब खाओ, लेकिन क्या शर्त रखी, हलाल और तय्यब खाना। हलाल सबसे पहली शर्त हलाल है, यानी हलाल अशिया कौन सी है वो। हलाल का लफ्ज पहले आपको बताती हूँ किससे है, हिलुन से है। हिल कहते हैं किसी गिरा को खोलना, और यानी इंसान के लिए कोई चीज हलाल कर दी गई ना तो गोया गिरा खोल दी गई, बल्कि हिलो नहीं लिखे हल्ला लिखे, हल्ला हा के ऊपर जबर डाले, यानी पाबंदी हटा दी गई उसके ऊपर से। अब ये कौन पाबंदी उठाता है, कौन बताता है कि क्या चीज हलाल है, ये अल्लाह ताला बताएगा, ये कौन सी चीज हलाल है, हलाल के जुमरे में आती है। और नंबर टू, जो तय्यब है, पाकीजा है, पाक है, वो पाक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यानी पाक में ये भी है जो लजीज है, टेस्टी है, पाक में ये भी है जो आपका दिल चाहता है खाने का, आपको आपको, यानी एक चीज है ना, मिसाल के तौर पे हम जो खाना खाते हैं वो हमारा स्टेपल फूड है। अब हम किसी और जगह का, मसलन अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं, उनका किसी और तरह का खाना होता है, हमारे दिल उसको नहीं चाहता खाने को, तो अब हमारे लिए नहीं है जरूरी कि हम वो खाएं, हमारी तबीयत उसकी तरफ नहीं मायल होती। फिर तय्यब में वो भी है जो जिस्म को जरर ना पहुंचाए, ठीक है, वो भी है, यानी जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए, वो भी तय्यब है। अब आप देखें कि कई चीजें हम आज खाते हैं जो हमें पसंद भी हैं, जो लजीज भी लगती हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें शुगर बहुत है, या उनके अंदर ऐसी फैट है, या उसके अंदर ऐसी चीजें हैं, मसलन किसी के लिए कोई चीज हो सकती है, किसी के लिए कोई हो सकती है, मसलन किसी को अगर कोई बीमारी लगी हुई हो तो उसके लिए कोई ऐसी चीज है जो उसको नहीं सूट करती, तो उस वो नहीं खाए, वो फिर उसके लिए वो तय्यब नहीं है, ठीक है। और हलाल चीज का तो आपको मालूम है कि जो शरीयत ने कह दी है कि ये हलाल है, याद रखिए जो चीजें शरीयत ने कह दी है ना कि वो हलाल है, वो तय्यब हैं, बेसिक्स में अपनी बुनियादी तौर पे वो तय्यब है। अनलेस कि कोई चीज, मिसाल के तौर पे आप एक चिकन है वो हलाल है, वैसे हलाल है, लेकिन आपने उसको जिबा ही नहीं किया, तो अब वो हलाल नहीं, वो तय्यब नहीं रहेगा। या एक चिकन है वो वैसे तो हलाल है लेकिन वो गल सड़ गया है, ठीक है, तब भी वो तय्यब नहीं, ठीक है। तीसरी चीज ये कि जब आपको खाने को कहा गया ना कि कुलू मिम्मा फिल अर्थ, तो इसमें सिर्फ ऐसे खाने से मतलब नहीं है, बल्कि इसमें ये भी सेकंड माना ये है, यानी तुम्हारी कमाई हलाल हो, कुलू वो खाओ जो हलाल और तय्यब हो, यानी तुमने जो कमाई की हो वो ऐसी हो जिसमें हलाल हो और तय्यब हो, यानी इंसान की कमाई के अंदर किसी का हक ना मारा गया हो, कोई लूट खसूट की कमाई ना हो, वो कमाई खाओ, यानी ये मतलब है। और इसी तरह मिलावट, इसी तरह रिश्वत, इसी तरह सूद की कमाई, इसी तरह शराब की कमाई, इसी तरह हराम चीजों को बेच के उनकी कमाई, नापाक चीजों को बेच के उनकी कमाई, झूठ बोल के जो कमाई की गई हो, किसी को चीट करके जो कमाई की गई हो, उससे कुछ जो फायदा आपको मिला हो, धोखा दे के किसी को के साथ फ्रॉड करके जो कमाई की गई हो, हेरा फेरी जिसको कहते हैं वो करके कमाई की गई हो, करप्शन की कमाई की गई हो, जिसमें भी किसी के हकूक मारे गए हैं, वो कमाई सारी हराम हो गई ना, तो अब उस हराम कमाई से जो, चाहे आप जबीहा चिकन ले रहे हैं, चाहे आप जिबा किया हुआ बीफ ले रहे हैं, वो सब हराम ही हो गया, वो कमाई ही हराम है, तो ये हराम हो गया। तो ना सिर्फ वो फिजिकली हलाल और तय्यब होनी चाहिए, बल्कि कमाई भी हलाल और तय्यब हो। ठीक है, ये बात समझ आ गई। फिजिकली खाने में कैसी हो, कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने भी इसको हलाल किया हो और पाक भी हो। आज इस बात को पढ़ के इतना शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान बनाया। क्यों? वो तो बहुत सी वजूहात है, लेकिन एक वजह ये, अल्लाह ताला ने हमें ये भी बता दिया अपने खाना पीना क्या है। क्योंकि आज कुछ कौमें जो हैं वो सांप खा रही हैं, ये इसको चूहे खा रही हैं, चमगादड़े खा रही हैं, मेंढक खा रही हैं, उनके सूप पी रही हैं, जिन चीजों से घिन आती है, कराहत आती है, वो उन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या फिर शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें मुसलमान बनाया, हमें इसका मतलब है इंसान, तेरी तो इतनी भी अकल नहीं है कि तुझे ये पता चले कि खाना क्या मैंने, तुझे तो इतनी भी सेंस नहीं। हम बड़े अपने आप को अकलमंद समझते ना, हमें क्या शरीयत की जरूरत है, हमें क्या कुरान के, हम खुद ही इतने अकलमंद हैं, हमें नहीं अपना पता चलता। अल्लाह ने जब अकल दे दी तो फिर क्या, तुम्हारी अकलों का तो ये हाल है। ये अभी ये बहुत बड़े सिविलाइज्ड कौमें हैं, बहुत तरक्की याफ्ता कौमें हैं, लेकिन ये तक नहीं पता कि खाना क्या है। अल्लाह अकबर। और जो कौमें मुर्दार खाती हैं, ये तक नहीं पता कि मुर्दार है ये, हम इसको ना खाएं। कितनी नापाक चीजें हैं जिनको खाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, इस चीज के ऊपर शुक्र अदा कीजिए आज। वरना कहीं उन्हीं के घरों में वैसे ही पैदा हो जाते तो आज हम भी वही छिपकलियां और मेंढक खा रहे होते, जिनको ये सेंस नहीं है कि क्या खाना है। अल्लाह ताला ने तो पूरी इंसानियत की भलाई करी कि सारी इंसानियत को बता दी ये तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला हलाल कर देते हैं ना, जिस चीज को हलाल किया है, याद रखिए उसके अंदर इंसान के लिए नुकसान नहीं है। ये जो आज कहते हैं ना, आप ये रेड मीट ना खाएं, फलाना ना खाएं, ये ना खाएं, आपको पता है ये क्या बात है? जब हम ओवर कर देते हैं किसी चीज को तो फिर उसमें नुकसान होता है। आज कहते हैं वो चिकन ना खाएं जो ब्रॉयलर है, ये ना खाएं, वो भी क्या है? अल्लाह ने थोड़ी ऐसा पैदा किया है, और तो हमने खुद इस तरह के उनको इंजेक्शन दे के और उनको कैसी फीड खिलाते हैं जिससे वो इतने बड़े हो जाते हैं और वो नुकसानदेह बनते हैं। तो ये इंसानों के कसूर हैं जिनकी वजह से वो चीजें नुकसानदेह बन गई। अल्लाह ने नहीं नुकसानदेह बनाई कोई चीज। आज नमक और चीनी को कहते हैं ये व्हाइट पॉइजन है, अल्लाह ने नहीं ये नुकसानदेह बनाई, ये इंसानों ने खुद बनाई हुई है। इंसानों ने खुद ऐसी चीजें ईजाद की हैं, चीजों को ब्लीच किया है, और आज क्या कह रहे हैं, अफसोस होता है, आज कह रहे हैं बेसिक्स पे जाओ, वो ही तुम्हारे लिए ठीक है। आटे को ब्लीच कर दिया, उसको चावल को ब्लीच कर दिया उसको, क्या आज कह रहे हैं ब्राउन राइस खाओ, आटे को कह रहे हैं होल व्हीट खाओ, सब होल व्हीट के, जो तुमने ये बना के रख दिया वो तो जहर बना दिया ना इंसानियत के लिए। जिस तरह से गाय और उनको परवरिश की जाती है, जैसे उनको, कभी अगर आपने ये चीज देखी हो, मैंने ये देखी थी इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री, कि किस तरह से गाय वगैरह को रखा जाता है, काफ्स को रखा जाता है छोटे से पिंजरे टाइप जगह के अंदर, वहीं पे वो अपनी लीद करते हैं, वहीं पे वो खड़े रहते हैं, वहीं पे वो ग्रो करते हैं, टीके लगा लगा के उनको बड़ा कर देते हैं, और फिर उनको फिर कहते हैं बीफ ना खाओ। अब आप देखें खुद इंसान ने अपनी बीमारियों के काम किए। फिर फिश, सब बहुत अच्छी फिश, बहुत अच्छी, अब वो कहते हैं फिश भी ना खाओ। क्यों? इसलिए कि फार्म्स में उसको रेज कर रहे हैं और वहां पे उनको वो चीज खिला रहे हैं जो कि उनके लिए सही नहीं। आज तक ये जो बीमारियां पैदा हुई किन वजह से पैदा हो रही, बाकी वो अलग बात है कि क्या वो किसी के ऊपर वबाल है उनके अमाल का या क्या है, वो एक अलग बात। लेकिन अगर पहले देखा जाए, सार्स बीमारी आई थी, किस वजह से पैदा हुई? आज देखें ये जो कोरोना वायरस है, किस वजह से है? इसलिए कि हलाल तय्यब नहीं खाते, ऐसा ही है ना। जब अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ोगे तो ये नतीजा निकलेगा। पूरी इंसानियत को कह दिया गया, क्योंकि पूरी इंसानियत की फलाह इसी में है। तुम बच जाओगे अगर ये काम करोगे तो, तुम नहीं मानते अल्लाह को, नहीं मानते ना मानो, लेकिन ये काम तो करो। इसमें आज सारी दुनिया परेशान है कि क्या करें इसका, लेकिन देखो इस एक आयत पे अमल करने से इन सब चीजों से बच सकते थे। एड्स, एड्स क्यों होती है सबको पता है, वो भी हराम में मुंह मारने से होती है, हराम काम करने से। जब एक इंसान निकाह के बंधन में नहीं बनता लेकिन बस अपने आप को आजाद छोड़ देता है और जगह जगह जाके बुराई का काम करता है, बेहयाई करता है, वो देखें वो भी हराम में पड़ने से हुआ। तो अल्लाह ताला के अहकामात में दुनिया की भी भलाई है इंसान की, आखरत की तो है ही है, दुनिया में भी तुम बच जाओगे बड़ी मुसीबतों से अगर तुम अल्लाह के अहकामात पे आओगे। तो ये कुरान पूरी दुनिया के लिए भलाई का पैगाम देता है। अब भुगत रहे हैं ना दुनिया वाले, अब परेशान है, अब भागे फिर रहे हैं, क्या करें इसका। लेकिन देखो ये एक आयत ने बता दिया, वो हमें खुद नहीं इन आयतों का पता, उनको हमने क्या बताना है कि तुम्हारे लिए भी यही पैगाम है, हलाल और तय्यब की तरफ आओ। आज देखें ये सिर्फ एक एक आपको मिसाल देती हूँ, आज इंसानों ने अपने लिए कैसा जहर कैसे कैसे अपने लिए खुद इजाद किए हैं। हाई फ्रक्टोज जो कॉर्न सीरप है, आपकी हर चीजों में ये सस्ता है और ये बहुत ज्यादा मीठा है शुगर के भी मुकाबले में। शुगर भी खुद ही बनाई हुई है लेकिन ये उससे भी ज्यादा सस्ता और उससे भी ज्यादा मीठा है। आपके सीरियल्स में, आपके जितने ये सोडाज हैं उनके अंदर, आपकी कैंडी बार्स, आपके जूसेस, आपकी ब्रेड्स, आपके ये फ्रोजन फूड, आपके सीरियल, केचप्स, जैम, जेली, सब में। और आपको पता है ये क्या करता है? मोटापा इससे है, डायबिटीज इससे है, हाई ब्लड प्रेशर इससे है, हार्ट डिजीज इससे है, वो कहते हैं कैंसर भी इससे कॉज हो रहा है। और एक बहुत बड़ी बात जो आपको बताना चाहते हैं उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आदमियों के अंदर जो नामर्दगी है वो इसी वजह से पैदा होती है। और यह आज इतना बड़ा मसला बन चुका है, इसको पूरे यूरोप ने बैन किया हुआ है लेकिन यहाँ पे ये अलाउड है। आप अपने घरों में देखें चीजों में कितना कितना डाला हुआ है, हम शौक से खाते हैं। तो हम अल्लाह ने कोई चीज ऐसी नहीं पैदा की जमीन के अंदर जो ऐसी नुकसानदेह हो, जितनी भी हलाल और तैयब चीजें हैं सब इंसान के लिए फायदेमंद, ये इंसानों ने खुद बनाई है। अल्लाह ताला ने तो नेचुरल शुगर के इंतजाम किए हैं फ्रूट्स की सूरत के अंदर और कितनी चीजों में, लेकिन इंसान ने खुद बनाए ना अपने लिए, आपने आपको मारने के लिए, अपनी सेहत की खराबी के लिए खुद इंतजाम किए। तो ये फिर जो हम आज भुगत रहे हैं बीमारियां, ये हमारे अपने हाथों की कमाई का नतीजा है। क्यों हम कहते हैं कि पहले जमाने में तो कभी सुनने में नहीं आया था, आज इतना सुनने में आ रहा है, क्यों हम कहते हैं? इसलिए कि पहले जमाने में ये इस तरह की चीजें नहीं थी इजाद। आज हमारी कोई पार्टी हमारे सोडास के बगैर नहीं होती पूरी, बल्कि बहुत शौक से दिया जाता है, कोक और पेप्सी को प्रमोट किया जाता है ना। और हम खुद जानते हैं चीजों के नुकसान, फिर उसके बाद हम वही करते हैं, वही खाते पीते हैं। जितने प्रिजर्वेटिव्स आप देख लें, प्रिजर्वेटिव सिर्फ बीमारियां ही हैं, हम कितनी प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें हमारे घरों में। तो नेचुरल से जब हम हट गए तो फिर ये हुआ। तो तैयब के अंदर वो भी सारी चीजें हैं जो हेल्दी हैं और जिसके अंदर कोई इंसान की सेहत का नुकसान नहीं हो। अल्लाह ताला ने कितनी हमारे लिए खैरख्वाही की है ये मैसेज देके कि इनमें से खाओ, ना कि ऊट पटांग चीजें ऐसी खा के अपनी सेहत बर्बाद करके उसके बाद फिर हम रोते। तो हलाल खाना इतना ज्यादा जरूरी है। अच्छा इससे फायदा क्या होता है? ये डायरेक्ट असर करता है इंसान के अमल पे, याद रखें। चाहे वो हलाल कमाई है उससे भी असर आता है, चाहे वो हलाल फूड है फूड की सूरत में, चाहे वो गोश्त है या जिस किस्म का भी खाना है, वो भी सारा हलाल। और अब हमारे लिए आसानी इस तरह है कि हम सबके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं किसमें क्या है। अब ये हमारे लिए तय्यब भी है कि नहीं है, हलाल तो सारी चीजें हैं वो तो हम देखते हैं, तय्यब है कि नहीं ये भी देख सकते हैं। तो अब देखें जो कमाई है वो भी हलाल हो, इसलिए कि जब इंसान की कमाई हलाल नहीं होती तो एक हदीस आपको इस सिलसिले में बताती हूँ, उससे आपको काफी अंदाजा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तिलावत फरमाई थी ना, तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने खड़े होके कहा, या रसूल्ला मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबु दावात बना दे। मुस्तजाबु दावात कौन होता है? जिसकी दुआएं कबूल होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐ साद पाक चीजें और हलाल लुकमा खाते रहो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाता रहेगा। यानी इंसान अगर हलाल खाएगा तो दुआएं कबूल होंगी, हलाल नहीं है तो दुआओं की कबूलियत नहीं होगी। बल्कि एक जगह पे आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, हराम का लुकमा जो इंसान अपने पेट में डालता है उसकी नहुसत की वजह से 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। जो गोश्त पोस्त हराम से पला है वो जहन्नमी है। अब ये चाहे हराम कमाई है, चाहे हराम इंग्रेडिएंट है। हम चीजें उठा उठा के ले आते हैं शेल्फ से और हमें पता ही नहीं होता कि ये इनमें हराम इंग्रेडिएंट है, या हम वो कमाइयां खा रहे होते हैं जो हराम होती हैं। अब चाहे वो चीज हलाल है लेकिन अगर कमाई हराम है तो फिर क्या? इसी तरह कमाई हलाल है लेकिन अगर चीज ही हराम है तो फिर तो सारा खराब हो गया ना। तो इसलिए ये चीज देखनी कि मुझे इस दौर में हलाल खाना है और इसको ढूंढना है, ये भी एक इबादत है, क्योंकि तो ये इस आयत पे अमल है कि ना आज हराम वाफिर मिल रहा है बहुत जगह पे, हलाल के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। हराम की तो चीजें भी बहुत सारी हैं, जॉब्स भी बहुत सारी हैं, बिजनेस भी बहुत सारे हैं, फूड भी बहुत किस्म की हैं शेल्फ्स पे पड़े हुए जो हराम में है। लेकिन जब इंसान ये फिक्र करता है, और ये फिक्र सिर्फ उसी को हो सकती है जो मोमिन है, जब ये इंसान फिक्र करता है ना कि नहीं अल्लाह ने ये हुक्म दिया है अब मैंने हलाल ही खाना है, तो इसका इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर, और ये इंसान को की इबादत में आप देखेंगे बेहतरी आएगी, आपके आमाल में बेहतरी आएगी, आपकी दुआएं कबूल होने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक जिस्म जो है समझ लें ऐसे, जैसे आप कोई बर्तन समझ लें, अब इस बर्तन में गंद भर देंगे तो बर्तन का ढक्कन खोलेंगे क्या आएगा? बदबू ही आएगी ना, खुशबू तो नहीं आ सकती। और ये जो हमारा खाना है ये हमारे पूरे जिस्म में दौड़ता है ना, इसी से खून बनता है। खून बनता है कि नहीं? वो हमारे कहाँ कहाँ जाता है खून? पूरे जिस्म में दौड़ता है। वो चीज जो पूरे जिस्म में दौड़ रही है अगर वो हराम से बनी होगी तो इस जिस्म से अच्छाई कहां से निकलेगी? फिर कानों को अल्लाह की बात कहाँ अच्छी लगेगी? तो उसको हराम ही अच्छा लगेगा जिसने हराम खाया होगा। फिर जुबान पे गंदी बातें ही निकलेंगी, कोई अच्छी बात तो नहीं निकल सकती क्योंकि सारा जिस्म गंदगी से भरा हुआ। फिर आंखों को क्या अच्छा लगता है? हराम देखना अच्छा लगता है उनको। कोई बहुत ऐसी चीजें तो अच्छी नहीं लगती जो अल्लाह ताला ने कही हो कि यहाँ ये यहाँ पे नजर डालो यहाँ ना डालो, वो तो नहीं उनको अच्छा लगेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इंसान हलाल का एहतमाम करे। और एक हदीस आती है कि जब एक बंदा एक मुसाफिर है, मुसाफिर है, अब मुसाफिर की आपको पता है ना दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन एक मुसाफिर ऐसा है कि वो उसके बाल बिखरे हुए हैं, वो जिस्म पे खाक है, कपड़े खाक आलूद हो चुके हैं, और वो अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा है। बहुत दुआएं करता है, बहुत दुआएं करता है, या अल्लाह लंबा सफर करके आया है, गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है, लेकिन हदीस में है उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी ग़िज़ा सब हराम है। फिर ऐसे में उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? समझ आए? यानी हालांकि मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं लेकिन उसकी दुआ नहीं कबूल हो सकती क्योंकि उसके ये सब चीजें हराम हैं। तो फिर सोचें कि दुआओं से भी हम महरूम हो जाते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो, जब हम इस तरह से हराम कंज्यूम करेंगे। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और देखो शैतान के कदमों की पैरवी ना करना। इत्तेबा कहते हैं किसी के फुटस्टेप्स पे चलना, जैसे कोई एक मिसाल के तौर पे कोई एक रेत पे चल रहा है, उसके कदमों के निशान है ना, तो आप उसके निशानों के ऊपर अपने पांव रख रख के चलें, ये इत्तेबा होती है। तो कहा गया खुतुआत तो शैतान की इत्तेबा ना करना। अब यहां पे तो कहा जाना चाहिए था ना कि ये खाओ और देखो ये ना खाना, लेकिन कहा क्या जा रहा है, खुतुआत शैतान पे ना चलना। ये क्या बात है? इसलिए कि शैतान सबसे पहले इंसान से क्या काम कराएगा, हराम खिलवाएगा। क्योंकि जब इंसान हराम खा लेता है ना, तो फिर उसका स्टेयरिंग शैतान के हाथ में आ जाता है। जाहिर है इसकी गिजा हराम है, उसका गोश्त पोस हराम हो गया, उसकी ना दुआएं कबूल हो रही है ना उसकी इबादत कबूल हो रही है। 40 दिन की तो वैसे ही नहीं नमाज कबूल हुई, तो अब क्या उसके लिए रह गया? लेकिन ना इब्ने मरदवे की यह हदीस है कि एक हराम लुकमे से जिसे इंसान अपने पेट में डालता है, 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती, एक हराम लुकमे से। तो फिर क्या इंसान की क्या और अमल रह गया फिर उसका? दुआएं वैसे ही नहीं कबूल हो रही, तो वो तो फिर शैतान के ही हाथों में चला गया ना, उसके हाथों में खेलेगा फिर, जिसको अल्लाह ने छोड़ दिया। तो कहा गया उसकी खुतुवात पे ना चलना। अच्छा, अब ये वला तत्तबिउ शैतान, क्यों नहीं कहा गया तुम शैतान की पैरवी ना करना, उसके कदमों पे ना चलना, ये कहा गया। इसलिए कि शैतान कभी भी जंप नहीं लगवाता आपसे, याद रखिएगा ये बात। एक छोटा सा स्टेप उठवाता है, कोई बात नहीं फिर क्या हुआ, ये तो छोटी सी चीज है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, सभी तो कर रहे हैं, ऐसा भी क्या हो गया, छोटा सा तो काम है। ये एक स्टेप उठा लिया ना, उसके बाद थोड़े दिन उसी पे खड़े रहेंगे, कुछ अरसा गुजर जाएगा, फिर दूसरा स्टेप उठवाएगा। अच्छा, अब यहां तक आ गए, चलो ये भी कर ही लेते हैं, फिर वो, फिर उससे तीसरा, फिर उससे चौथा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बुराई का एक दरवाजा जब इंसान खोलता है तो और कई दरवाजे खुल जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई शराब खाने जाता है, पब जाता है, वहां भी शराब पीता है। अब क्या है, वहां से उसको और बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे, जिना के भी अड्डों का पता चल जाएगा, और हराम कामों के भी अड्डों का पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि जुआ कहाँ पे खेलते हैं, ये सब वहीं से पता चलेगा। तो मस्जिद का पता तो नहीं कोई देगा उसको वहां पे बैठे हुए, क्या ख्याल है? इसी तरह जब इंसान नेकी का एक दरवाजा खोलता है, मिसाल के तौर पे आपने एक कुरान क्लास ज्वाइन कर ली, वहां से आपको हिफ्ज का पता चला, वहां से आपको तजवीद की क्लासेस का पता चला, वहां से आपको सदका और खैरात के कई प्रोजेक्ट्स का पता चल गया, वहां पे आपको किसी और कोई नेकी के काम का पता चल जाता है, तो कितने दरवाजे खुल गए। किसी का पता चल गया, किसी का जनाजा है, किसी की बीमार पुरसी करने का ख्याल आ गया, किसी बीमार के यानी इत्तला मिल गई, तो कितने दरवाजे खुले ना। तो याद रखिए, वो कभी भी इतनी लंबी जंप नहीं लगवाएगा आपसे कि वहां तक पहुंच जा बुराई में, नहीं, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। आपको बरसीसा की कहानी तो पता होगी, पहले भी सुनाई भी है मैंने, बरसीसा की, जो राहिब था, मॉन्क था, जिसको शैतान ने पागल बना दिया था। मैं मुख्तसर बता देती हूँ अभी, कि बरसीसा ना एक बड़ा ही नेक आदमी था, पुराने जमाने में इतना नेक था वो कि उसने दुनिया छोड़ के रहबानियत इख्तियार कर ली थी, अपना अकेला रहता था, अल्लाह की इबादत बहुत ज्यादा करता था। तो क्या हुआ कि एक कुछ भाई थे, उन्होंने जंग पे जाना था, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले थे, उनकी एक जवान बहन थी, उन्होंने कहा हम अपनी बहन का क्या करें, इसको कहीं छोड़ के जाएं, किधर छोड़ के जाएं? तो उन्होंने कहा ये ऐसा है कि वो राहिब इतना नेक है, इससे ज्यादा अच्छी क्या जगह हो सकती है कि हम वहां पे छोड़ जाएं, चलो उसके पास रहेगी, सेफ होगी। उन्होंने उसे बात की, उसने पहले तो कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा फिर हम किधर छोड़ें, ये तो इस तरह। तो शैतान उसके पास आया और उसको कहा कि देखो तुम मान जाओ, क्योंकि बेचारी लड़की अगर किसी गलत हाथों में लग गई तो क्या होगा। तो उसने उनसे हामी भर ली, अच्छा ठीक है, लेकिन वो जरा दूर के घर में वहां पे इसको छोड़ के जाना, मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। उनका ठीक है, अच्छा जनाब, वो वहां पे छोड़ गए अपनी बहन को। अब ये जाता था राहिब रोजाना, वहां पे खाना बाहर रख के आ जाता था, और वो लड़की अंदर से निकलती खाना ले जाती थी। इस तरह अरसा गुजरता रहा, शैतान उसके पास आया, उसने कहा देखो तुम बाहर रख जाते हो, आखिर वो एक इंसान है, किसी से तो बात करनी है उसने, किसी के साथ तो बैठेगी। जो उसके भाई भी यहाँ पे नहीं है तो चार बोल उसके साथ बोलो, तो कोई हर्ज थोड़ी है इसमें। अब वो जब जाने लगा तो आप जाके उससे अलग सलग भी करने लगा, उसका हाल चाल भी पूछने लगा। कुछ अरसा ऐसे चलता रहा, फिर शैतान ने उससे कहा कि देखो तुम बाहर से आ जाते हो, अगर अंदर कुछ देर उसके दिल बहलाने के लिए बैठ जाओगे तो क्या हर्ज है, ये भी तो एक नेकी ही है, किसी के पास बैठना, किसी की दिलजोई करना। उसने कहा हाँ वाकई बात तो सही है, इसी तरह करना चाहिए। अब ये जो वसवास आते हैं ना, खुतुआत, क्या होते हैं, वसवसे, शैतान के वसवसों की इत्तेबा नहीं करनी। अब वो वसवसा डालता है इंसान को, लगता है कि ये मेरा दिमाग खुद ही सोच रहा है, लेकिन ये जो बार बार आती है ना कोई चीज, वो शैतानी वसवसा होता है। अब वो जाके अंदर भी बैठने लगा, जब अंदर बैठने लगा तो कुछ अरसा उससे बातचीत होती रही, उससे कुर्बत हो गई। और फिर कुर्बत होते होते ये तो जहां पे एक मर्द और एक औरत अकेले हो तो हदीस में है कि तीसरा शैतान होता है। और उसके बाद वो काम हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और वो लड़की हामिला हो गई। अब तो उसको बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई कि ये हो क्या गया, अब तो इसके भाई आएंगे तो मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। और उसने क्या किया, वो जो उसके बच्चा पैदा हुआ उसने उस लड़की को भी कत्ल कर दिया, उसके बच्चे को भी, और उनको दफना दिया। जब वो भाई आए तो उनको बता दिया कि उसका तो कुछ वो हो गया था, वो तो मर गई है बेचारी। रोते धोते चले गए, शैतान उनकी ख्वाब में आया और उनसे कहा कि वो तो ऐसा ऐसा काम इसने किया, और वहां पे तुम जाओ, वहां पे वो लड़की और उसका बच्चा दफन है। तो वो गए, उन्होंने वो जमीन खोदी तो वहां पे ऐसा ही था। वो तो बादशाह के पास शिकायत लेके चले गए, बादशाह के आदमियों ने आके उसको पकड़ने के लिए आ गए कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म इसने कर दिया। जब वो उसको पकड़ के लेकर जा रहे थे तो शैतान आ गया, अब एक आदमी की शक्ल में आया और उसको कहा देखो मैंने ही तुम्हें आज तक यहां तक पहुंचाया है, अब मैं ही तुम्हें सिर्फ इससे निकाल सकता हूं। उसने कहा मेरी तो बड़ी बदनामी हो गई, मेरा तो क्या मेरा बनेगा, खुदा के लिए मुझे निकालो इसमें से। उसने कहा उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, फिर निकल सकते हो तुम। ने कहा बताओ, जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। उसने कहा मुझे सजदा कर दो तब मैं तुम्हें इससे निकालूंगा। उसने उसको सजदा कर दिया और उसके बाद उसको उन्होंने कत्ल कर दिया कत्ल के जुर्म में। तो उसका क्या अमल रह गया, उसने कत्ल भी किया, जिना भी किया और शिर्क भी कर दिया। तो शैतान कैसे, ये हदीस में है ये सारी बात, ये किस्सा, तो शैतान कैसे इंसान को वरगलाता है, कैसे वो एक एक स्टेप आगे लेकर जाता है। एक दिन में नहीं कुछ करा देता कि तुमने ये करना है। अब उसको एक दिन में कह दिया जाता है मुझे सजदा करो, करता है वो कोई? उसको वो कहता कत्ल करो, करना था उसने कोई? जिना करो, करना था कोई? नहीं। मगर देखिए आप, ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज कराता है ना, तो इंसान झांसे में आ जाता है। कोई बात नहीं, इतना सही तो काम, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, इतनी सी तो चीज है। और हमने भी कर लिया तो क्या, मैं उतना तो नहीं ना कर रही जैसे लोग करते हैं। ये शैतानी फंदे हैं। और इससे कैसे बचा जाता है, इंसान जैसे उस बंदे ने अपने आप को तसल्लियां दी ना, अपने आप से इंसान झूठ ना बोले, अपनी नियत को साफ करे। ये नियतों के अंदर जो खोट होता है ना, बड़ा छुपा हुआ होता है, ये पता नहीं चलता। इंसान कहता है कि मैं नमाज पढ़ाऊंगा, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, ये नहीं है कि मुझे कोई इमामत कराने का वो है, बस लोग मेरी तिलावत तो सुने ना, कि मेरी तिलावत कितनी खूबसूरत है, मेरी आवाज तो पता चले लोगों को। और ये फिक्स ऐसे ही होगा कि इंसान कॉन्स्टेंटली अपने एक्शंस को वॉच करे, कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर सबसे सख्त पहरा बिठाए, बजाय लोगों को देखने के ना, लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को देखेंगे मैं क्या कर रही हूं। हमारी सारी एनर्जी, सारा वक्त हमारा किस में गुजरता है, लोगों की एक्टिविटीज क्या है, जरा मैं जानू तो सही। अगर इतनी सख्ती अपने साथ हम करें ना, तो बहुत हमारे अंदर बेहतरी आ जाए। ये हमें अपनी परवाह भी नहीं होती, सारी दुनिया की फिक्र हमें पड़ेगी है, कौन क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, किधर जा रहा है, किधर सैरें कर रहा है, किधर घूम रहा है। ये शैतान का फंदा है। इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप, कदमों की इत्तेबा ये है, इसके एक स्टेप पे कदम रखोगे फिर दूसरा स्टेप, फिर दूसरे पे कदम रखोगे फिर तीसरा स्टेप आएगा। समझ आए? ये भी एक बात है, शैतान की चालों को समझना जरूरी है। ये तो हमारा बेड़ा गर्क करने पे तैयार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, ये तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, यानी इसकी दुश्मनी छुपी भी नहीं है, खुली दुश्मनी, खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करता। उसने तो उस दिन क्या दिया था जब अल्लाह ने उसको वहां से निकालने के लिए इसको तो मरदूद करार दे दिया था, तो इसने उस दिन ही कहा था कि मैंने नहीं छोड़ना आदम की औलाद को, मैं तो इनके दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, मैं नहीं इनको छोड़ूंगा। तो जब उसने कसम खा के अल्लाह ताला को ये बात कह दी हुई है, तो अब क्या बात रह जाती है। और अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमाया है इस बात को कि देखो वो तुम्हारा दुश्मन है, सूरह फातिर में, इन्ना शैताना लकुम अदू फत्तखिज़ूहु अदुवा, तुम भी तो उसको दुश्मन समझो। हमें पता हो ना हमारा कोई दुश्मन है, हम उसे कितनी एहतियात करते हैं। किसी को पता हो कि उसकी कोई दुश्मनी कहीं शुरू हो गई है तो इतनी एहतियात कि क्या पता कहाँ से किस वक्त आ जाए, पीछे से हमला कर दे, क्या पता हम बाहर निकले तो, क्या पता हमारे घर में आ जाए, क्या पता रात को आ जाए, तो कितना इंसान एहतियात करता है। लेकिन शैतान से हमें कोई एहतियात ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। बल्कि कई लोगों के सामने अगर ये बात की जाए ना कि ये शैतान के ने देखो कैसा खेले, तो कहते हैं ना शैतान को ना इल्जाम दो, शैतान को कैसे ना इल्जाम दे, वो तो आपका खुला दुश्मन है, वो तो वो कराएगा चीजें, वसवास डालेगा। और ये जो वसवास बार बार पलट पलट के आते हैं ना, कि इंसान झटकता भी है फिर आ जाता है, फिर आ जाता, नहीं, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें भी बस इस तरह करना चाहिए, ये शैतानी होते हैं। और मैं तो ये सिर्फ कहूंगी कि शैतान के वसवास से ना सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तोहफा दिया है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। यकीन जाने मैं तो अपने आप से, अपने आप का कहती हूँ कि इंसान, मैं तो खुद नहीं बच सकते, हमारे लिए नहीं इम्पॉसिबल है कि हम बचें, वो तो छोड़ता ही नहीं है, वसवसे वसवसे डालता है, कभी इधर से आता है कभी उधर से आता है, वाकई ऐसा है। तो सिर्फ अल्लाह की पनाह में आना इसका सलूशन है, और कोई इसका हल नहीं है, अल्लाह ताला ही हमें बचा सकता है। आखिर उस दुश्मन का आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं जिसको आप देख ही नहीं सकते। तो इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, इसी वजह से हिफाजत की दुआएं जरूरी हैं इस दुश्मन से बचने के लिए। हम इनको चाहे कुछ ना समझे, सूरह नास को कुछ ना समझे, लेकिन ये है जिसके अंदर हमारे लिए हिफाजत है, इसीलिए इसको सुबह शाम पढ़ना चाहिए, माउजात को, इखलास नास फलक, ये तीन सूरतें तीन तीन दफा पढ़नी चाहिए, और आयतल कुर्सी, ताकि इस शैतान मरदूद से हमारी जान बची रहे।